कुर्वर्जश्रृणवता जथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस्कामः द्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नादिपशान्तये इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रम् कुरुषत्तमा शृण्वताम् सर्वभूतानाम् सर्वभूतमयो विभुः श्रीभगवान् उवाच ये माम् त्वाम् च शरश्चेदम् गिरिकन्दरकाननम् वेत्रकीचकवेरूणाम् गुल्मानेश्वरपादपान् शृङ्गानि मानिधिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च शिरोदम् मे प्रियम् धाम श्वेतदीपम् च भास्वराम् श्रीवत्सम् कौस्तुभम् मालाम् गदाम् कौमोदकीम् मम सुदर्शनम् पाञ्चजन्याम् सुपर्णम् पतगेश्वराम् शेषम् च मत्कलाम् सूक्ष्माम् श्रियम् देवीम् मदाश्रयाम् ब्रह्माणम् नारदमृषि भवम् प्रह्रादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाव्यैः अवतारैः कृतानि मे कर्माणनन्तपुण्यानि सूर्यम् सोमम् हुताशनम् प्रणमम् सत्यमव्यक्ताम् गोवित्रान् धर्ममव्ययाम् दाक्षायणीर्धर्मपत्निः सोमकश्यपयोरति गङ्गाम् सरस्वतीम् नन्दाम् कालिन्दीम् शितवारणम् ध्रुवम् ब्रह्मऋषिम् सप्त पूर्णश्लोकांश्च मानवान् उत्थाय पररात्रान्ते प्रयतः सुसमाहितः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सोऽखिलात् ये माम् स्तुवन्तनेनाङ्ग प्रतिबुद्ध्य निशात्यये तेषाम् प्राणात्यये चाहम् ददामि विमलाम् मतिम् श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य हृषीकेशः तद्ब्रह्माय जलजत्तमम् हर्षयन् विविधानीकम् आरुरोह खगाधिपम् विमोक्ष्य विमुक्त करके गजजूथपम् गजराज को अब्जनाभः पद्मनाभ तेना गजेंद्र के साथ अति भी पार्षद गतिम गमितेना जो पार्षद गति को प्राप्त किया था उसके साथ युक्त युक्त होकर गंधर्व सिद्ध विविधय ही गंधर्वों सिद्धों और देवताओं द्वारा उपगीयमान कर्मा जिनका कर्म गाया जा रहा था, विशेषकर गजेंद्र उद्धार की लीला गाई जा रही थी। अद्भुता अद्भुत वर्णन से अतीत स्वभवना अपने निवास स्थान श्री वैकुंठ गरुणासन गरुण पर चढ़कर अगात गए या आए एवं गज जूथपम विमोक्ष्य तेना पार्षद गतिम गमितेना अपि युक्तः अब्जनाभः गंधर्व सिद्ध विविधय उपगीयमान कर्मा अद्भुतम स्वभावनम आगात गरुणासनासन। तो जैसा पहले कहा गया उस घटना का स्मरण दिलाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं इस प्रकार भगवान अब्जनाभ कमलनाभ गजेंद्र जी का उद्धार किए। इस श्लोक में भगवान का नाम आया है अब्जनाभ कमलनाभ। भगवान के नाभि से संपूर्ण विश्व का जन्म हुआ और भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो ऐसे विश्व जनक श्री भगवान गजेंद्र का उद्धार किए और गजेंद्र पार्षद गति को प्राप्त किए। पार्षद गति गमतेन तेन अति इधर से तो भगवान अकेले आए थे वैकुंठ से, परंतु उधर से अकेले आए थे इधर से गजेंद्र को भी साथ में लेकर के गए। पार्षद गतिम गमते न तेना अति युक्ता पार्षद गतिम गमते न गजेंद्र पार्षद गति प्राप्त किए। पार्षद का अर्थ होता है सेवक सभासद भगवान की नित्य सेवा में रहने वाले परिकरों का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप प्राप्त किया गजेंद्र जी ने और भगवान के साथ गए। भगवान उनको साथ में लेकर गए। ध्रुव महाराज भी वैकुंठ गए हैं अजामिल भी गए हैं लेकिन और सबके वैकुंठ जाने में और गजपति के वैकुंठ जाने में बहुत भेद। इनको लेने के लिए साक्षात भगवान आए, भगवान अपने साथ ले गए और को लेने के लिए तो अपना दूत भेजते हैं। तो यह अंतर है। पार्षद गतिम गमतेन तेन अपि युक्तः सन कैसे आए गरुणासन तेना अपि युक्तः गजेंद्र जी के साथ युक्त होकर आए और गरुणासन कहा गया है। तो इसे यह सिद्ध होता है कि गजेंद्र भी जो चतुर्भुज रूप में थे भगवान के साथ ही गरुण जी पर बैठे थे। कोई अलग से विमान नहीं आ। वैसे गरुण जी आवश्यकता अनुसार तो इतना विशाल बन सकते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भी उन पर लादा जा सकता है। मंदराचल को भगवान ने लादा था एक बार समुद्र मंथन करते समय और स्वयं भी चढ़े सब देवताओं को भी असुरों को भी चढ़ाए और गरुण जी उड़ करके लाए थे पर्वत। तो बहुत ही सुंदर सुखद आसन था। भगवान जिस पर बैठते हैं उसी पर अपने सेवक को बैठा कर लाए। भगवान अपने भक्तों से दासों से बहुत भेद का व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को पीछे मोटरसाइकिल पर चढ़ाकर कहीं ले जाए, ऐसे भगवान ले गए गजेंद्र जी। कितना बड़ा सौभाग्य है गजेंद्र जी। कोई भी जीव है जब शरीर छोड़ता है तो उसको लेने के लिए कोई न कोई आते हैं। अगर स्वर्ग जाना होता है तो देवता लोग आते हैं, वैकुंठ जाना होता है तो भगवान के पार्षद आते हैं, नहीं तो बेचारा जाएगा कैसे। ऐसा नहीं है कि मुक्त हो गया और उड़ गया चला गया, लेकर जाने वाले पार्षद होते हैं। और पुण्य किया है, दान किया है और भी व्रत नियम दूसरे का उपकार किया है तो उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए देवता आते हैं। और बहुत पाप किया है तो उसको लेने के लिए भी कुछ आदमी कुछ लोग आते हैं, बहुत भयावह जमराज जी के जन जिन्हें जमदूत कहते हैं, बहुत भयावह होते हैं और बहुत मारते पीटते हुए ले जाते हैं। रास्ते में नाश्ता वास्ता के लिए कुछ नहीं रखते, उनके पास सामान होता है डंडा रस्सी रॉड यही सब पीटते हुए ले जाते। कई बार जीव नरक गया होगा, कई बार स्वर्ग गया होगा, लेकिन वैकुंठ केवल एक बार जाना होता है, जब गत्वा न अनुवर्तन। तो भगवान ले गए कहां, स्वभवनम, स्वभवनम जहां भगवान रहते हैं। भू से भवन शब्द बना है, भू का अर्थ होता है होना, समृद्ध होना, सुख प्राप्त करना, आनंद से रहना। जहां कोई व्यक्ति निश्चिंत आनंद से रहे उसको भवन पर, तो भगवान का भवन, भगवान जहां आनंद से रहते हैं उस जगत में वैकुंठ में भगवान किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं करते, भगवान का कोई विरोधी है ही नहीं। इसलिए वहां पर सुदर्शन चक्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, गदा की और शंख की आवश्यकता नहीं, ये सब युद्ध करने के भगवान के समान। तो वहां बड़े आनंद में रहते हैं। इसका अर्थ यह मत समझिए कि इस संसार में आते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं भगवान, परंतु ये भगवान का भवन नहीं है। यह बहिरंगा शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, तो इसीलिए भगवान बहुत थोड़ा देर तक के लिए आते हैं, इसके बाद चलेगा। तो गरुणासन सन भगवान अब जनाभ स्वभवनम अगात, कथम भूतम भवनम अद्भुतम भवनम। अगात शब्द का अर्थ है आए या गए। अद्भुतम भवनम, यहां श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के धाम के तरफ संकेत करते हैं और वर्णन करने से ऐसा लगता है कि सुखदेव गोस्वामी भी वो घर देखे हैं, भगवान का धाम, अथवा खूब अच्छा से वर्णन सुने हैं। अद्भुतम शब्द लगा है, अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, परम आश्चर्य में, ऐसा भवन, ऐसा लोक, इतना सुंदर सजा हुआ सुखद चिन्मय और किसी का नहीं। तो वहां भगवान ले गए। यह कथा कह करके अब श्रवण कीर्तन करने वालों को क्या लाभ होता है इस कथा का, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतन महाराज कवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षम स्वर्ग्यम जसस्यम कलिकलम सातहम दुह स्वप्न नाशम कुरुवर्जस्यवताम। एतत् गजराज मोक्षणम, एतत् गजराज मोक्षणम नाम कृष्णानुभावः तव ईवितः, तव का अर्थ तुभ्यम, आपके लिए, तुम्हारे लिए, हे महाराज आपके लिए यह गजराज मोक्षणम रूप कृष्णानुभाव ईरितम कथितम। हे महाराज, मैंने भगवान श्री कृष्ण के इस अनुभाव को, जो उन्होंने बड़े स्नेह से गजेंद्र का उद्धार किया, मैंने आपके प्रति कहा। बड़े लोग कर्तात्म के पद पर अपने को नहीं रखते हैं। मैंने कहा ये न कहकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपके लिए कहा गया। जिनके लिए कहा गया वे तो कह रहे हैं आपके लिए कहा गया, लेकिन कहा कौन अब तो सब समझ ही रहे हैं। इसलिए हमेशा मैं कहा हूं, मेरे द्वारा कहा गया, ये कहने की आवश्यकता नहीं होती। इस जगत में लोग अपने बारे में बहुत बहस छेड़ते रहते हैं, 24 घंटा बात करते रहते हैं, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं वो किया। सुखदेव गोस्वामी कथा कहकर कहते हैं आपके लिए गजराज मोक्षणम कृष्णानुभाव कथित। ये माया शब्द लगा रहे हैं, माया कथित ईरित मेरे द्वारा कहा गया। इस शब्द में भी निरहंकारता छिपी हुई है। माया कथित मेरे द्वारा कहा गया, मैं कहा ही न कहकर के मेरे द्वारा कहा गया। माया कृष्णानुभाव, कृष्ण का अनुभव, अनुभव या प्रभाव जो भी कहिए, भगवान श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति स्नेह, उनकी अद्भुत त्वरा आना, इस तरह से सब लीला कृष्ण का अनुभव। भाव से भाव शब्द बनता है और उसके पहले अनु शब्द लगा हुआ, कृष्ण का चरित्र कहा गया। कथम भूतम तत्राह स्वर्गीयम इत्यादि, कैसा है भगवान का यह चरित, ये गजराज मोक्षणम, इसके विषय में महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते समय ही कह दिए थे। तत्कथा सु महत्पूर्णम धन्यम स्वस्तैनम शुभम जत्र जत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। श्रोता प्रारंभ में ही इस कथा के विषय में बोले थे यह धन्य है, इसको सुनने से कहने से धन बढ़ता है, सुख बढ़ता है। स्वस्तैन और किसी भी क्रिया में व्यक्ति सफल होता है और शुभम शरीर आदि निरोग रहता है, परिवार ठीक रहता है। केवल श्रवण कीर्तन करने से, केवल सुनने से और कहने से, यहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी केवल श्रीनिवताम पर सुनने वालों को क्या फल मिलता है ये बता रहे। शब्द से ये भी समझ लेना चाहिए कि गृणतान जो बोलते हैं उनके लिए भी पहला लाभ बता रहे हैं। स्वर्ग्यम, जो व्यक्ति गजराज मोक्षण कृष्ण चरित सुनता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। जो स्वर्ग बहुत बहुत तपस्या दान आदि करने से मिलता है, वह स्वर्ग गजेंद्र के उद्धार की लीला को सुन करके पा लेता, वही स्वर्ग मिल जाता है उसको, कितना आसान। और इसमें श्रद्धा आदि की भी शर्त नहीं की गई। कई कई बात कही जाती है तो कहते हैं इसको यदि कोई श्रद्धा से सुनता है तब उसको यह फल प्राप्त होता, लेकिन यहां पर केवल श्रीनवतम शब्द का प्रयोग। वैसे अपने आप समझ लेना चाहिए श्रद्धा भीतर भीतर है, बिना श्रद्धा के कोई सुनेगा नहीं, लेकिन यह कथा ऐसी है कि नहीं भी श्रद्धा हो और सुने तो उसे स्वर्ग तो निश्चित मिलेगा, नरक में तो नहीं जा सकता। स्वर्गीयम अथवा इसका एक और भी भाव है, वह व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से हीन हो जाता है, हमेशा उसकी स्थिति सत्वगुण में होती है। स्वर्गम सत्वगुणोदय, जब सत्वगुण बढ़े किसी में रहे तो समझना चाहिए कि स्वर्ग, इसका अर्थ है उसकी स्थिति सुखमय रहेगी। सुख में रहेगा, ज्ञान में रहेगा, अच्छा रहेगा केवल सुनने से। जसस्यम, उस व्यक्ति का जस बढ़ता है जिसको सुनता है। किस प्रकार का जस बढ़ता है? जस बढ़ता है कोई विशेष कार्य करने से, लोकोत्तर काम करने से, अथवा लोक में भी बड़ा बड़ा काम करने से नाम बढ़ता है, जस बढ़ता है। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति यदि कोई बड़ा काम करना चाहता है तो सफल हो जाता है। इस कथा श्रवण की यह विशेषता, और सुनने में कोई मेहनत नहीं, बस ये कहीं जोर लगाना पड़ता है कि नींद ना आने पाए, बाकी तो और कोई मेहनत नहीं है, है ना? यही एक मेहनत है। उसके पहले भी कुछ मेहनत करना पड़ता है, पर्वत लांघना पड़ता है, जंगल पार करना पड़ता है। गृह का रजना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम धंधा भी भारी भारी मंदराचल और हिमालय ही है, कितने लोग तो लांघ ही नहीं पाते, है ना? वे देखते हैं, अरे बाप रे बाप, हम ये काम सलटा रहे, ये काम होने ही वाला नहीं है। तो पर्वत की इतनी ऊंची चढ़ाई है कि वो पार नहीं कर पाते। भगवान की कथा में आने का मतलब है बहुत भारी भारी जंगल, नदी और पर्वत पार करके आना। गृहकारज नाना जंजाल, गृहकार यही नाना जंजाल, और मरते दम तक बस काम करते रहो, काम करते रहो। आखिर भगवत सप्ताह का छठा दिन भी बीतने जा रहा है। वास्तव में पर्वत, कहीं कठिन पर्वत हो, घोर जंगल हो, नदी हो, चाहने वाला व्यक्ति भी उसको पार करके नहीं पहुंच सकता है गंतव्य पर। तो यह अपेक्षा है श्रीणवतान, सुनने वालों को फल मिलता है, और उससे और भी ध्वनित होता है सुनने वाले, अनुमोदन करने वाले। अनुमोदन का अर्थ है इस कथा के आयोजन में धन खर्च करने वाले, शरीर लगाने वाले, व्यवस्था करने वाले, अनुमोदन का ही अर्थ होता है। अनुमोदन का अर्थ केवल वाणी से कुछ बोल देना ही नहीं होता, वह तो उसका एक अंग है। असली अनुमोदन तो है इसको सपोर्ट करना और वाणी से प्रशंसा करना इसकी, इस कार्य की, इसका अभिनंदन या अनुमोदन का। तो जो अनुमोदन करते हैं, स्मरण करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, उनका संकल्प पूरा होता है। यह भगवान की कृपा है, केवल इस प्रसंग को सुनने पर संकल्प पूरा होता है, और संकल्प पूरा होता है तो उनका यश बढ़ता है, जसस्यम। और शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की कीर्ति संसार में जितना दिन रहती है वह स्वर्ग में रहता है। कीर्ति जस से सजीव होती, यदि दूसरे का उपकार किया है, अच्छा काम किया है, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वह व्यक्ति अपनी कीर्ति रूप शरीर से जीता है। कीर्ति जस से सजीव होती, तो जसस्य यश प्राप्त होता है। कली कल्म शाप, कलयुग के समस्त दोषों का खंडन करने वाला है, नाश करने वाला है यह प्रश्न सुनने मात्र। कलिकलमश, कभी कभी आचार्य लोग कलिकलमश का अर्थ करते हैं झगड़ा, द्रोह, ये सब कली, ये सब खत्म समाप्त होता है। परंतु यहाँ अर्थ है समय का दोष, कलेर दोष निधे राजन। हे महाराज परीक्षित, यह कलयुग दोष का समुद्र। परंतु भगवान की कथा, विशेष करके गजेंद्र उद्धार की, कलयुग के समस्त दोषों का आपह नाश कर देता सुनने मात्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये उक्तियां सुखदेव गोस्वामी के मुख से कहां निकल रही हैं? गंगा जी के तट पर। तीर्थ में वैसे ही कोई झूठ नहीं बोलता, गंगा जी के किनारे कह रहे हैं, वो गंगा जी को देख कर भी बोलते होंगे। और महाराज परीक्षित के प्रति बोल रहे हैं, वहां बहुत से ऋषि मुनि भरे पड़े हैं। यह बात स्पेशल बोलने का कारण यह है कि वास्तव में इस कथा का यह प्रभाव, कलि कल्मषाप हम कले है कल्मषानी आ अपहति आपहम कलयुग के समस्त दोषों का दोषों की अपहति कर देता नाश कर देता। कलयुग के जिन दोषों को दबाना बहुत कठिन है। आप सभी अनुभव करते हैं कि हम लोग कलयुग में जन्म लिए हैं और चारों तरफ दोष ही दोष भरा पड़ा है। पर कोई बात नहीं, जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति हो, चारों ओर जल ही जल है, लेकिन फिर भी उसके पास यदि सुदृढ़ नौका है, पानी का जहाज खूब अच्छा है, तो समुद्र में भी वो सुख से जीता है। बल्कि कुछ लोग समुद्र में ही बोट चलाकर जहाज चला करके बहुत धन कमाते हैं। समुद्र उनका हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है, न कि उसमें डूब कर मर जाते। तो कलयुग क्या करेगा? जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा सुनता है, तो कलयुग क्या उसका बिगाड़ सकता है? और नहीं भजन करता है, नहीं जप करता है, तो सतयुग क्या करेगा उसका? कलयुग दोष का समुद्र है, लेकिन कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग्रह परम ब्रजेत। भगवान के कीर्तन मात्र से, नाम के उच्चारण मात्र से जीव पार हो जाता है कलयुग के दोषों। कलि कल्म शाप हम दुःस्वप्न नाशम, और खराब सपना का नाश करने वाला है। यहाँ दुःस्वप्न से तात्पर्य है, कभी कभी मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे कर्म फल उपस्थित होते हैं जिनकी सूचना सपना में मिल जाती है। ऐसा स्वप्न जो निश्चित सफल होकर के रहेगा, कुछ ऐसे सपना आते हैं व्यक्ति। तो दुःस्वप्न आने का मतलब यह है कि वह फल आएगा। जैसे हम लोग सपना की बात सुनते हैं, कौन सा सपना देखा, जिस दिन मतलब कल मरने वाला है तो आज रात में बहुत बहुत खराब सपना देखा और मर भी गया, तो मरा भगवान के हाथ से, इसलिए उसका दुःस्वप्न भी ठीक था। और रावण सपना देखा, नहीं रावण नहीं, सीता के पास एक स्त्री आती थी, रावण के द्वारा नियुक्त की गई थी त्रिजटा, तो उसने सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जात धन सेना सब मार, मैं सपना देखी हूँ। और सीता जी को समझाते हुए कहते, मैं सपना देखी हूँ कि एक बानर यह सपना में कहो बिचारी हुई है, सत्य गए दिनचारी, बस दो चार दिन बीतने के बाद ये सपना सत्य होने वाला है, इसको दुःस्वप्न कहते। कर्म फल का निश्चित सूचक स्वप्न, परंतु यह प्रसंग ऐसा है कि कोई कर्म फल चल दिया है, प्रारब्ध बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है, वो भोगना पड़ेगा, लेकिन इस प्रसंग को कोई सुन ले तो वह कर्म फल ध्वस्त हो जाता, नहीं भोगना पड़ता, दुःस्वप्न नाश, इसका नाश कर देता। सुन बताऊ, पढ़ने वालों की क्या गति हो, केवल सुनने मात्र से ही दुःस्वप्न नष्ट हो जाता, दूषित कर्म का विषम फल आने वाला होता है। और कुछ पता नहीं है हम लोगों को कि हम लोग कौन कौन बुरा कर्म किए हैं या अच्छा किए हैं, तो बुरे कर्म का बुरा फल तो आएगा ही, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, वो तो आएगा, लेकिन बुरा कर्म फल भी आने वाला होगा, तो भगवान का नाम लेने से और यह प्रसंग सुनने से वो टल जाएगा, नहीं भोगना पड़ेगा। मेटत कठिन कुअंक भाल, भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, कठिन कुअंक बहुत भीषण दुखद फल आने वाला होता है वो मिट जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान शिव राम राम रटते रहते हैं, इस कारण से 20 भी अमृत का फल दिया उनको। उनके कहने का आशय है कि यदि भगवान शिव राम राम नहीं रटते शुरू से ही, तो 20 पीने के बाद क्या रिपोर्ट होता कहा नहीं जा सकता। तो मैं विनोद में बोल रहा हूँ, वास्तव में तो भगवान है, उनका क्या 20 करेगा, परंतु काल कूट फल दीन है अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को,
तीन जी नाम का नीक प्रभाव जानते हैं पूरा पूरा अच्छा। पहला प्रभाव तो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया कि कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट हलाहल विष भी अमी का फल दिया, अमृत का फल दिया, उनके तो जीवन में अनुभव है। इसीलिए तो रात दिन एक मुख से राम 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 रटते ही रहते हैं, 24 घंटा का अखंड कीर्तन उनके घर में चलता है। भगवान शिव के पांच मुख हैं और पांच मुख से में एक मुख तो अखंड राम नाम का कीर्तन चलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोगों का तो एक मुख है वो भी नहीं लगाता, एक मुख है तो और फिक्र करनी चाहिए ना कि इसी से भगवान का नाम जप करना है। तो भगवान शिव एक मुख से हमेशा नाम रखते रहते हैं। सीखिए, भारत में बहुत लोग शिव जी के भक्त हैं और वो जानते हैं कि थोड़ा सा दया दृष्टि कर देंगे तो हमारा बहुत बढ़ जाएगा काम धंधा, और मांगते हैं थोड़ा देखिए हमारे तरफ निहारिए, और ये देखते हैं कि शिव जी अपने लिए कोई भोग नहीं रखे, न कपड़ा पहनते हैं न घर बनाए, एक वृक्ष के नीचे रहते हैं, शिव विश्राम विकप श्रुति गाय। एक बरगद का वृक्ष है, भागवत में लिखा गया है वह वृक्ष है 1000 कितना योजन ऊंचा और बहुत चौड़ा फैला है और उस पर एक भी पक्षी नहीं रहता है। पक्षी रहेंगे तो बीट करेंगे और सब, तो कोई पक्षी नहीं रहते और इतना घना है कि सूर्य का प्रकाश कभी नीचे नहीं आ पाता। और भगवान शिव का वो स्थायी पंडाल समझिए भागवत कथा के लिए। जब भी उनका उल्लेख आया है भागवत में तो यही आया है कि नारद जी सुन रहे हैं, शंकादिक सुन रहे हैं और भगवान शिव कृष्ण तत्व पर प्रवचन कर रहे हैं, यही उनका कार्य। भगवान शिव का और कोई काम नहीं है वास्तव में। प्रलय काल के समय अपना रूप दूसरा एक्सपेंशन करके प्रकाशित करके और उससे जगत को नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये तो सदा भगवान की कथा में लगे रहते। कहीं भी देखिए भागवत का उल्लेख करके, केवल एक जगह पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ हैं, रमण कर रहे हैं, तो ऋषि लोग वहां से भाग चले गए नारायण आश्रम, बद्रिकाश्रम चले गए केदारनाथ। तब से भगवान शिव ने व्यवस्था कर दिया कि इस क्षेत्र में जो आएगा इलावृत वर्ष में वो सब स्त्री हो जाएगा। बाकी और जहां भी उल्लेख मिलता है तो बस कथा कहते हैं या सुनते हैं। तो भगवान शिव जानते हैं नाम के प्रभाव को। यह दुह स्वप्न नाशम शब्द कठिन कर्म के नाश के लिए बताया जा रहा है, और दुःस्वप्न शब्द इसलिए दिया गया है, मान लीजिए कर्म यदि कोष में जमा है अभी फल देना चालू नहीं किया है तो हो सकता है कि भाई इधर उधर हो जाए, कर्म का फल विफल हो जाए, लेकिन ऐसा जैसे कोई राइफल की गोली चल चुकी है और चलने के बाद भी विफल हो जाए, ऐसा कर्म फल एकदम और देने के लिए छोड़ दिया गया पर भगवान का नाम लिया जाए तो जीव बच सकता। और गजेंद्र की क्या हालत थी, और कोई जीने की स्थिति थी क्या? लेकिन भगवान जैसे बचा लिए तो सुनने वाले को भी बचा लेंगे, इसलिए श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। जमराज जी ने भगवान के दूतों को कहा है, अपने दूतों से कहा है कि भगवान के नाम को जो लेते हैं कथा को सुनते हैं उनको छोड़ करके जाना दूसरे पापियों को लाना, और यदि तुम लोग चले गए भगवान के भक्तों के पास और कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मरने की रिपोर्ट आ रही चाहे कुछ भी, ऐसा साफ कहा। मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूं, मैं तो मनुष्यों में कुछ का स्वामी हूं जो पापी हैं, वैष्णवों के स्वामी तो विष्णु। तो भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव है, यह कोई और कथा जैसा नहीं है कि कुछ थोड़ी सी शांति मिल जाए, चलो घर द्वार छोड़ करके थोड़ा बैठ लेंगे, मनोरंजन हो जाएगा और तबला हारमोनियम चल रहा है कुछ सुन लेंगे, ये वो कथा नहीं है। ये कर्म के कठिन बंधन को काटने वाली कथा है और जो कर्म फल देने के लिए उद्यत हो चुका है, चल दिया, उसको भी नलिकाई करता है तो फिर कोष में जमा हुए कर्मों को क्यों नहीं समाप्त कर देगा। स्वप्न नाशम कुरवर जस्ण बता, हे कुरकुल तिलक, जो कोई इस कृष्ण भाव का श्रवण करता है गजराज की मुक्ति के विषय में तो उसको ये फल प्राप्त होता। तो मेरे द्वारा यह कहा गया, आपने ध्यान से सुना और ये प्रश्न होता है कि सुनने का अवसर तो सदा नहीं रहता है और इस प्रकार से मान लीजिए दुस्वप्न या कोई और उपद्रव या कोई भीषण कर्म फलाने वाला है तो क्या करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जथानुकीर्ति अंते तत् श्रेयस कामा द्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्ना दुःखशान्तये। अतः श्रेयस कामा एतत् जथानुकीर्तयन्ति, जथा का अर्थ जथावत, अतः जो कल्याण चाहते हैं, कर्म के भीषण दुर्भोग से बचना चाहते हैं, वे लोग प्रातः काल उठकर और शुचय कार के स्नान करके दुःस्वप्न आदि क्लेशों का नाश करने के लिए अनुकीर्तयन्ति, इसका कीर्तन करते पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन कहते हैं, पढ़ते हैं बार बार इस प्रसंग को और विशेष करके नमो भगवते तस्मै जतये तच्चिदात्मक पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। श्रेयस कामा, श्रेयस कामा का अर्थ जो हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, वे लोग प्रातः काल इसे पढ़ते हैं। प्रातः उत्थाय, प्रातः काल सज्जा का त्याग कर देना एक बहुत बड़ा गुण है। जो लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं वो पूर्व जन्म में भूत प्रेत रहे होंगे, लेकिन जो लोग अच्छे जीवन बिताए हैं पूर्व जन्म में वे लोग प्रातः काल उठ जाते हैं। प्रातः काल से होता है तर्ज अरुणोदय से, जैसे ही सूर्य की लाली पूर्व दिशा में आना प्रारंभ होती है उसी समय में जग जाते, या इससे भी पहले जग जाते। भक्त लोग तो रात भर नहीं सोते, लेकिन कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, प्रातः उत्थाय। कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं सूर्योदय होने पर भी लगता है कि आज ही भर इनको सोना है, अब सोने को मिलेगा नहीं, इसलिए जितना आदाय कर लेते हैं और प्रतिदिन वही आदत होती है और कुछ न कुछ प्रतिदिन बहाना होता है। सिर चकरा रहा है तो पेट में दर्द है, बुखार तो कह नहीं सकते, नहीं तो जगाने वाला नापेगा पकड़ करके नाड़ी की बुखार है नहीं, इसलिए दर्द और माथा में चक्कर, बस यही उपाय है सोने का। ऐसा हमने भी देखा है, एक दो बार घटना घटी है, कोई लड़का सो रहा है और जगाने वाला गया तो कह दिया कि बुखार है, तो हटा करके रजाई और उसका हाथ पकड़ा बुखार देखने के लिए, तो हाथ बिल्कुल नॉर्मल, बुखार होने पर तो शरीर में ताप होगा ना, गर्मी कुछ नहीं, तो कहता है तुम कह रहे हो बुखार है, बुखार तो बिल्कुल नहीं, बुखार नहीं सिर में दर्द, तो अब कौन सा थर्मामीटर दर्द नापने के लिए दर्द कैसे नापा जाए। और इसको जिसको यह दर्द होता है वो रोज भोर में ही दर्द उठता है और समय में तो ठीक हो जाता है। ये कहो कि भगवान का भजन नहीं करना है, केवल तमोगुण के सुख में रहना है, उन्हें कोई सुख नहीं है सोना बिना मतलब। सारी जिंदगी सोते ही आए और बस सो सो। ज्यादा आप कहने लगे तो ऐसे भक्त हैं नहीं, हमारे शरीर की ऐसी दशा है कि कुछ आराम जरूरी है। भजन कब करेंगे? प्रातः उत्थाय शब्द आ गया है यहाँ पर, बिल्कुल भोर में उठ जाना चाहिए और सुचि हो जाना। सुचि का अर्थ है शरीर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, मलोत्सर्ग आदि करके, दांत धो करके, आंख धो करके, नहा करके, तिलक करके और उसके बाद भगवान का जप कीर्तन करना चाहिए। श्रेयस कामना यदि अपना हित चाहता है तब, और अपना हित नहीं करना चाहता है तो क्या किया जाए। एक व्यक्ति से मैं पूछा था कि आप मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, तो कहता है वो जहां भेज देंगे वहां जाएंगे। जो भगवान जहां भेज देंगे वहां जाएंगे, तो मैं जोर लगाकर पूछा नहीं आप चाहते कहां हैं, तो फिर कहता हमारे चाहने से क्या होगा। तो मैंने प्रश्न पूछने वाला मैं ही तबाह हो गया कि अब क्या पूछ। तो हमारे चाहने से थोड़े होगा। मैं पूछा फिर भी आप चाहते नहीं, आपके करने से नहीं होगा, चाहने से नहीं होगा, लेकिन आप चाहते हैं क्या। तो फिर वही कह ही रहा हो कि चाहने से क्या हो। इसको कहते हैं मंद बुद्धि, कोई बात समझना नहीं, भगवान जहां भेज देंगे वहां जाएंगे। हम लोग यहां बैठे हैं, किसी को पकड़ कर कोई कहे तो चलो जेल में तो जाएंगे, पूछेंगे हम क्या गलती किए हैं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो जहां भेज देगा वहां जाएंगे। तो नरक में भेजेगा तो चले जाएंगे, स्वर्ग में भेजेगा तो चले जाएंगे। वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था कि आखिर क्या क्या नहीं जा पाएंगे, जो भेजना चाहेगा तो जाना ही पड़ेगा। अंततः वो हमारी बात को समझाएंगे या मैं उसकी बात नहीं समझा, जो भी हो। कोई जिज्ञासा नहीं है कि हम अपना हित ऐसे करें, हम जन्म मरण में पड़े हैं, भगवान के धाम में जाए, सदगति को प्राप्त करें। सदगति क्या होती है इसका भी पता नहीं, परंतु जो वास्तव में श्रेयस कामी है, जो हित समझ चुके हैं अपने जीवन में, हित अहित समझ चुके हैं और हित चाहते हैं, तभी द्विजातिगण, द्विजाति का अर्थ जिन्होंने संस्कार प्राप्त किया है, जिन्होंने मनुष्य जीवन का को जीना सीखा है कैसे जीना चाहिए, तो ये लोग प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके और अनुकीर्तयन्ति, जथा अनुकीर्तयन्ति मतलब जथावत खूब अच्छा से कीर्तन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इस पर एक प्रश्न बनता है, अनेन श्रेयो भवति इति कुतो ज्ञातम्। मान लीजिए महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछें, इस गजेंद्र उपाख्यान के पढ़ने से और सुनने से श्रेय मिलता है, हित होता है, ये आपको कैसे पता चला, कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं कि इसको पढ़ने से ये होता है, वो होता है, ये सुनने से ये होता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने साक्षात कहा और वही बैकुंठ में पहुंच कर नहीं कहे थे, गजेंद्र का उद्धार कर लिए थे, सब देवता जुटे थे और वहीं पर भगवान ने अपने श्रीमुख से यह बात कही थी, अपने मुख से बात कही थी। तो भगवान का कहा हुआ तो सब तरह से प्रमाण होगा, और वो भी भगवान शिव, ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदि सबके सामने कहे थे। इदमा हरि प्रीत गजेंद्रम कुरु सप्तमा, शिणवताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो हरि। इदम आह हरि प्रीत, इदम आह इत्यादि जावत समाप्ति, यहां से लेकर के समाप्ति तक भगवान के उद्गार। यह बात इदम आह हरि, इस बात को हरि ने कहा था और बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान कहे थे। किससे कहे थे? गजेंद्रम, अपने प्रिय भक्त गजेंद्र जी से कहे थे, हे कुरुवंश शिरोमणि। और उस समय श्रीमतान सर्वभूताना, वहां पर उपस्थित समस्त देवता सभी जीव सुन रहे थे, श्रीमतान सर्वभूताना सर्वभूतमय हरि, और वैसे भी भगवान सर्वभूतमय है, तो सभी जीव सुन रहे थे, कहने का मतलब उनके भीतर ही तो सारा विश्व है, सब सुन रहे। भगवान अगर कुछ गलत बोलेंगे तो और भी जीव हैं, सब उनके भीतर ही कहेंगे ना कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर्वभूतमय है, सभी को सुनाते हुए भगवान ने कहा, वहां उपस्थित सभी जीवों को, देवताओं को सुनाते हुए भगवान ने गजेंद्र जी से यह बात कहा। लीजिए मैं इसको रिले कर देता हूँ क्या क्या कहा था। इदम यह भगवान ने कहा था, सर्वभूतानाम श्रीमता, यहाँ सर्वभूतानाम से तात्पर्य है वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं के सुनते सुनते भगवान ने बात कही। तो बहुत महत्व का प्रवचन है भगवान का, तो सुनिए भगवान ने क्या कहा था। श्री भगवान वाच ये माम ताम च सरश्चेदम गिरिकंदर काननम वेत कीचक वेणु नाम गुलमानी सुरपादपान। प्रसंगात अन्यस्य अपि स्मरणे फलम उच्यते। भगवान ने इतना ही नहीं कहा था, क्या क्या कहा था सुनो, पहले सुनो भगवान ने क्या कहा था। प्रसंग बस इससे जुड़े हुए अन्य वस्तुओं और लोगों के स्मरण से भी जो फल होता है कहा जा रहा है। सर्वेशां द्वितीयंता नाम स्मरंती इति अष्टमे न अन्वय, इस श्लोक से प्रारंभ करके बाद में आने वाले आठवें श्लोक में जो स्मरंती शब्द है, स्मरंती वहां से अन्वय जुटेगा। सब द्वितीयांत में, द्वितीयांत रखा गया कर्म में, तो सबके साथ स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं, लगाना पड़ेगा। तो जो इस तरह स्मरण करते हैं, देखिए आठवां श्लोक कौन पढ़ रहा है। उत्थाया परवात्रांते प्रयतासो समाहिता स्मरंत मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सोखिला। जो भगवान नाम रखे वहां पर त्रिकुट पर्वत पर सरोवर के तट पर, तो इनका स्मरण करने से व्यक्ति सब प्रकार के कर्मबंधन पाप ताप से मुक्त हो जाता है। अखिलात एन सह ही निश्चितम उच्चन, क्या क्या स्मरण करने से जो सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा था ये स्मरंति ते मुच्यन्ते, क्या क्या स्मरण करते हैं, माम जो मेरा स्मरण करते हैं, और त्वाम प्रत्यक्ष सबसे बाद अपने बाद भगवान ने गजेंद्र को ही कह रहे हैं, जब वहां ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं और सब भी हैं, सबको कहेंगे लेकिन अपने बाद गजेंद्र को कह रहे हैं ये माम स्मरंती ते अखिलात एन सह मुच्यम, ये त्वाम च स्मरंती ते अखिलात एन सह मुच्यम। जो मेरा स्मरण करते हैं, तुम्हारा स्मरण करते हैं, और सरश्चैदम यहां तक कि इस सरोवर का जो स्मरण करते हैं करेंगे, वे सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। आप यहां से चालू करके और आठवां श्लोक तक ऐसा मत सोचिए कि इन सबका जब स्मरण करेंगे तब तो पाप से मुक्त हो, नहीं तो भगवान ऐसे नहीं बोलते। ये माम त्वाम च सरश्चैदम, इदम शब्द कह करके भगवान विशाल सरोवर की तरफ दिखा कर कह रहे हैं। वो सरोवर और साइट इधर उधर, पहले सरोवर की तरफ कहे ये सरोवर, और गिरी कंदर काननम या त्रिकूट पर्वत, इसकी गुफाएं कंदराएं और इसका वन, जो स्मरण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान दिखा दिखा कर बोल रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरी कंदर काननम, ये सब बता रहे हैं। गिरी दिखाते हुए पर्वत के शिखर को भी दिखा रहे हैं। देत कीचक वेणु नाम, यहां तक कि देत बांस कीचक झुरमुट आदि जिस पर गजेंद्र चला है, जिसको रौंदा है, जहां इसका चरण पड़ा है, जिन वृक्षों से लताओं से बांसों से इसका स्पर्श हुआ है, इनका स्मरण करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। और गुलमानी बेत कीचक वेणु नाम गुलमानी, ये शब्द बांस कीचक और बेत्र के झुरमुटों को, गुल्म मतलब संदर्भ है, बहुत घने घने बांस हैं, बेत हैं, इनको स्मरण करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाएं। और सुरपाद पान, इस पर्वत पर जो दिव्य वृक्ष हैं देवताओं के, जैसा कहा गया कि वरुण देव का उद्यान है और समस्त लोकपालों का अपना अपना बाग था उस पर, सुरपाद पान, सुर मतलब कल्प वृक्ष है, देव वृक्ष, इन सबका जो स्मरण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाए। श्रृंगारी मानी जो श्रियानी, और ये जो श्रृंगारी मानी, ये जो प्रधान तीन शिखर हैं, एक लोहे का, एक रजत का और दूसरा स्वर्ण का, ये जानते हो ये तीनों कौन है? एक मेरा आवास स्थान है, मैं सैर करने के लिए पर रहता हूँ, और एक शिव जी का और ब्रह्मा जी का। भीष्मानी ब्रह्मण, भीष्मानी ब्रह्मण और मे मम शिव से भीष्मानी श्रृंगानी मान। और तीन किनारे हैं, इसलिए पहले त्रिकुट कहा जाता था, प्रधान तीनों शिखर को दिखाकर भगवान कहे होंगे, ये भी बताए होंगे कि ये शिखर मेरा निवास स्थान, मेरा भीष्म है, और ये शिव जी का है और ये ब्रह्मा जी का है। जो पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन नहीं किए, तो भगवान यहाँ अपने मुख से कह रहे हैं, मतलब महाराज परीक्षित से जो नहीं कहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो उसको पहले ही भगवान गजेंद्र जी से कह चुके हैं। ब्रह्मा भीष्म मे भीष्म शिव से भीष्म च, तो तीन वचन में होने से ब्रह्मणो मे शिव से भीष्म। इमानी श्रृंगारी, इमानी शब्द से ये भगवान दिखाकर ऊपर देख करके बोलते हैं, ये शिखर विशाल। शिरोदम में प्रिय धाम, मेरा प्रिय निवास स्थान, मेरा प्रिय धाम क्षीर समुद्र, इसका जो स्मरण करते हैं सब पाप से मुक्त हो जाते। श्वेत द्वीपम च भास्वरम, और इस क्षीर समुद्र के बीच में एक जगमग करता हुआ ज्योतिर्मय धाम है, जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं, बिल्कुल उजला द्वीप, तो वो मेरा धाम, दोनों के लिए प्रियम धाम लगेगा। तो भास्वरम श्वेत दीपम, भास्वरम का अर्थ जगमग करता हुआ प्रकाशित मेरा धाम, इसका जो स्मरण करते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते। शेषम चमत्कलाम सूक्ष्मां श्रियम देवदिन्नदाश्रयम ब्रह्मांडम नारदम ऋषिम भवम प्रहलादमेव च, और मेरे ही अंश छुट गया था। श्रीवत्सम कौस्तुभम माला गदम कौमोद किम मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पतगेश्वरम। श्रीवत्सम, श्रीवत्स हमारे वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स चिन्ह है, इसका कौस्तुभम मेरे गले में जो कौस्तुभ मणि लटका हुआ है, और मेरी माला बनमाला और गदा जिसका नाम कौमोदकी है, इनमें से किसी भी वस्तु का कोई स्मरण करेंगे तो उनके सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। सुदर्शनम मेरा चक्र जिसका नाम सुदर्शन है, पांच जन्म मेरा शंख जिसका नाम पांच जन्म है, सुपर्णम पतगेश्वरम और पक्षीराज गरुण, कोई भी व्यक्ति जो इनका स्मरण करेंगे सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने से विग्रह पर धारण करने वाले अस्त्र शस्त्र और माला आदि के विषय में बोल रहे हैं, भगवान के चिंतन का यह स्वरूप है। भगवान के स्मरण का मतलब भगवान के पोशाक, भगवान का श्रृंगार, भगवान का आयुध, ये सब ध्यान करना चाहिए, नहीं तो भगवान का कोई ध्यान क्या करेगा? बताइए, ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति जन योगिनो, योगी लोग ध्यानावस्थित मन से भगवान को देखा करते हैं। तो भगवान को देखने का मतलब भगवान के हाथ देखना, हाथ में सुदर्शन चक्र देखना, या शंख कौमुद की गदा कमल पीताम्बर पहना हुआ कौस्तुभ मणि लगाया हुआ, यही भगवान का ध्यान है ना? कोई अंधकार या लाइट देखना, ये कौन ध्यान है? और लाइट का ही ध्यान करना है तो खूब 10,000-20,000 वाट का बल्ब जला करके और आंख भी खराब कर दे, लाइट देखते हैं, कोई लाइट फाइट नहीं देखता है, भगवान को देखना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे हैं, श्रीवत्सम कौस्तुभम माला गदरम कौमोद किम मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पतगेश्वरम मम शब्द कॉमन है, सबके साथ लगेगा। मम श्रीवत्सम, मम कौस्तुभम, मम मालम, मम गदरम कौमोद की, मम सुदर्शनम, मम पांचजन्यम, मम सुपर्णम पतगेश्वर। ये सबका संबंध भगवान के साथ है और भगवान के ही एक रूप है। भगवान की गदा में और भगवान में भेद नहीं है, भगवान के शंख में भगवान में भेद नहीं, सब भगवान के दिव्य श्रृंगार वस्त्र और आयुध भगवत स्वरूप। और इन सब मंगलमय वस्तुओं का स्मरण करने से मंगल होता है। शेषम चमत्कलाम सूक्ष्मम श्रियम देवी मदाशयम। और शेष संकर्षण जो मेरे अंश हैं, मेरे कला है, और सूक्ष्म, हमें सूक्ष्म श्री के लिए है, उनके लिए है।